الحلاكة كفور ملتاندين تشمي شغر بينما بانشا قلب تروحش تكاشم تبجي وچا فتتانم پاونفشو بيشنو بيون نمو مها بطننا يا كرشن پريما پردادیتی كرشنا يا كرشن چيتن نمني گورت بيشي గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయై కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాశ్రయాజుభావ తుతేపి తన్మయతయా తర్వోభినేదు తవైవాస్మి తవైవాస్మి నజివామి త్వయా వినా हम लोगों ने विभिन्न वक्ताओं के मुख से कृष्ण तत्व के संबंध में श्रवण किया। हम लोगों ने सुना है श्रीमद् भागवत अमल पुराण है और प्रमाण है। श्रीमद् भागवत कृष्ण तत्व के संबंध में क्या बतला रहे हैं? हम देखते हैं कि कृष्ण प्रेम के विषय हैं। प्रेम भी बहुत प्रकार के हैं, जिसमें द्वादश प्रेम हैं, प्रकार के रस हैं। उसमें भी पांच मुख्य रसों के कृष्ण विषय हैं। विशेष करके ये बतलाया गया है काम गायत्री कृष्ण का स्वरूप है। काम गायत्री में क्या चीजें हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोग। संबंध में मदन मोहन कामदेव, कामदेव यहाँ पर कृष्ण मदन मोहन। उपबाण जो है ये गोविंद जी हैं और गोपीजन बल्लभ यहीं पर अनंग है। उसमें कृष्ण का स्वरूप कैसे है? 23-24 अक्षरों में ये बतलाया गया। काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो इत्यादि देकर के बतलाया 24.5 अक्षर। 24.5 अक्षर में कृष्ण का मूल अंग है मुखारविंद। तो इसलिए इस काम गायत्री को कृष्ण का स्वरूप बताए। अब ये श्रीमद् भागवत से लेकर के हम जब चलते हैं, विशेष करके चैतन्य चैतामित राय रामानंद संवाद में ये बतलाया गया है, जहां पर उन्होंने कहा जे कृष्ण का स्वरूप राधा स्वरूप रस स्वरूप प्रेम स्वरूप, ये सात स्वरूपों के संबंध में पूछा। उसमें राय रामानंद जी ने महाप्रभु की कृपा से ही व्यक्त किए ये सब भावों को, जिसमें और रसों की तो बातें कह करके कहा, जैसे यहां तक कि वात्सल्य आदि रस, वात्सल्य इत्यादि भाव का भी अगोचर है। क्या चीज जो भागवत का प्रतिपाद्य जो प्रेम है और कृष्ण का जो स्वरूप है वो क्या है? भागवत विशेष करके भागवत का प्रतिपाद्य विषय गोपियों का प्रेम, और गोपियों में कौन सा प्रेम? स्वकीय नहीं परकीय। इसलिए श्रीमद् भागवत का यह प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण प्रेम, और वह भी कृष्ण प्रेम कैसा विषय में भी पारकीय भाव के ये विषय है। गोपियां पारकीय भाव की आश्रया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का विचार है गौड़ीय वैष्णव में ही ये करके जब लीला करते हैं तब ये रहता है इस प्रकट जगत में, गोलोक नित्य वृंदावन में इसकी स्थिति नहीं है। किंतु हमारे आचार्य ने रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि जी ने, विशेष करके श्रीमद् भागवत में, गोपाल चंपू इत्यादि में भी इस चीज को दिखलाया गया। श्रीमद् भागवत में देखने से इसकी सूचना दी कहाँ, सूचना दिया जात पक्षामी व मातरम खवात स्तन्ने यथा बच्चतुराधाता प्रिया प्रिय व पति और पत्नी नहीं कहा। इसलिए यहाँ पर भी इस चीज की इंगित दी। और दशम स्कंद में वात्सल्य रस और सख रस के बाद में ये 21वीं अध्याय में प्रथम ही वेणु गीत का प्रसंग आया, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखलाया विशेष करके ब्रज में स्वकीय भाव नहीं, कभी संभव पर नहीं, क्योंकि कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ यहां, यहां तक कि यज्ञ पवित्र ही नहीं हुआ, यहां यज्ञ पवित्र नहीं हुआ वहां पर स्वकीय भाव नहीं हो सकता है, विवाह ही नहीं होगा। इसलिए आर्य धर्म की यह नीति है कि पहले यज्ञ पवित्र होगा, जनेऊ होगा, इसके बाद में विवाह होगा। जनेऊ के पहले ही विवाह हो जाएगा यह गलत है। तो कृष्ण तो आर्य संतान थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये वैश्य में आते हैं, इसलिए ये द्विज कहलाते हैं। तो इनमें यज्ञ पवित्र है, इसलिए यज्ञ पवित्र यहां पर हुआ नहीं, हुआ कहां, मथुरा में, जबकि मथुरा में पहुंचे उस समय में यज्ञ पवित्र हुआ, इसलिए विवाह का कोई प्रसंग नहीं हो सकता है, इसलिए विवाह तो यहां नहीं है। और जो हम लोग भांडीर वन में या ब्रह्ममोहन के समय में जो दिखलाते हैं वो जो नहीं समझते हैं उनको युक्ति और तर्क के लिए हम लोग कहते हैं, यथार्थ में वैसा है, परोक्ष रूप में उसका वर्णन किया जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से ही जहां निगम कल्प तरुर गलितम फलम कहा, और इसके बाद में नारद जी का और व्यास जी जो संवाद हुआ, यहां पर उन्होंने कहा अपश्चतपुर संपूर्ण मायांच जदा पार्श्वयाम, यहां पर नारद व्यास जी को जो मोह है या चित्त में जो चंचलता है, क्षोभ है, चित्त में शांति नहीं, क्योंकि इस चीज को पार्कीय भाव का कहीं भी उन्होंने नहीं बताया, केवल श्रीमद् भागवत में इसको उन्होंने परोक्षवाद के रूप में इसको ग्रहण किया, परोक्षवाद नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। इले धन्यास ममूढ़ मतयो अपि हरण्य एता जानंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, सह कृष्ण सारा, इसमें उन्होंने बताया। खेद कर रही है गोपियां, हम अपने पति पुत्र और सास ससुर के अधीन हैं, हम स्वच्छंद रूप में कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए, किंतु ये हिरणियां धन्य है जो हिरणी जाति होकर के मूढ़, मूढ़ माने क्या, ज्ञान नहीं है इनको, तनिक भी, तनिक भी ज्ञान नहीं है, अब मरने वाली हैं कि क्या है कुछ ज्ञान नहीं, अपने प्राणों को शब्दों के ऊपर में दे देती है, लुब्धकों की या बहेलिए की बंसी की तान पर, वेणु के तान पर अपने प्राण को निछावर कर देती है, ऐसी मूढ़। किंतु ये धन्य है, क्यों धन्य है, अपने पतियों के साथ में कृष्ण का दर्शन कर रही है, जी भर कर प्रणय के द्वारा देख रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ, और कृष्ण उसका अंगीकार कर रहे हैं। किंतु हम लोग जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं है संसार विश्व में, हमारा जीवन निरर्थक, एक हिरणी भी धन्य है और हम लोग कृष्ण से मिल नहीं सकते इच्छा से, कितने हम लोगों के अंदर ये विघ्न बाधा है, इस चीज को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। नद्यस्तु तदा उपधार्यम उकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भक्त नवाधा, आलिंगन स्थगित ऊर्मा भुजई मुरारे गृहंतिपाद दिवलम कमल। कितना सुंदर और सरस ये वर्णन किया है श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही सर्वोत्तम श्लोकों में से एक एक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी इसकी बहुत व्याख्या करते हैं, सब समय इसका उदाहरण देते थे। गोपियां अपने भावों को छिपाने की चेष्टा कर रही हैं और जहां ये श्लोक करते ही उनका सब भाव प्रकटित हो गया, बहुत लज्जित। नदियों को उपमा दे रहे हैं, नदियां में स्त्रीलिंग, वो अपनी भुजा रूपी उर्म लहरियों के द्वारा कृष्ण का आलिंगन करती हैं और फिर कृष्ण उसको अनदेखी करते हैं तो लज्जित होकर के उनके चरणों में पुष्प का उपहार देते हैं, मानो अपना हृदय उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। हम नहीं कर सकते, क्यों? समुद्र पत्नियां नदियां हैं अथवा और नदियां हैं जो समुद्र से मिलने अपने पति के पास में दौड़ी हुई जा रही हैं और कृष्ण के वेणु की धान तान और कृष्ण के अत्यंत सुंदर रूप को दर्शन करके बीच ही में पति को स्मृति छोड़ दी और छोड़ करके क्या की, लौट गई और लौट करके कृष्ण के चरणों को आलिंगन किया, उनको आलिंगन किया। करिए जैसे ये नदियां धन्य है जो अपने पतियों को छोड़ करके स्वच्छंदता से मिल सकती है और हम लोग नहीं मिल सकती, हमारा जीवन व्यर्थ है। इसके बाद में तो पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग शिकम कमेन दयिता दयिता तन मंडित न पति स्तन मंडित ने नहीं कहा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पार्थिव भाव जो श्रीमद भागवत का ये मूल चीज है देने का, जो कहीं भी और जगहों में नहीं दिया गया। दयिता स्तन मंडित न, अपनी दयिता, उस समय कृष्ण की शादी कुछ नहीं, ये तो पूर्व राग में गोपियां पीछे पहले कह रही। इसके बाद में यहां से करीब करीब 8-10 वर्ष के बाद में जब गए हैं मथुरा में तब उनका उस समय उपनयन हुआ है। तो यहां पर गोपी ही कह रही है, कौन गोपी कह रही है? गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ है गोपियां कह रही हैं, किंतु उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी स्वयं कह रही है। करी अपनी दयिता के कुमकुम को धारण करके कृष्ण अपने चरणों में लेकर के घासों पर चलते हैं, उसे देख करके ये पुलिंदी कन्याएं धन्य है जो उसको अपने शरीर पर दे करके अंगों पर दे करके और विगत काम हो जाती है, सारे रोगों को हृदय रोग को भी दूर कर देती है। यहां पर भी उसी तरह का प्रकाश किया, विशेष करके गोपी गीत में राजपंचाध्यायी के वहां पर तो स्पष्ट रूप से प्रथम श्लोक से लेकर के और अंत तक जितने श्लोक हैं वो सब राजपंचाध्याय के सब इसी के संबंध में पार्थिव भाव सोचा। गोपियां जो अपने पति की शुश्रूषा कर रही हैं, जो पतियों को परवेशन कर रही है, जो बच्चों को लालन पालन कर रही हैं, जो रोटी सेक रही हैं, दलिया बना रही हैं, दूध औटा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, सबको छोड़ करके यहां तक के पतियों को भी छोड़ करके उनकी सेवा इत्यादि छोड़ करके चले आई कृष्ण की बंसी तान सुनकर। आज अगू अन्यो अन्यम अलक्षितो जमा, उनको यदि अपने ही पति होते तो दूसरों को दूसरों के साथ में सभी जाती उनके पास में, इसलिए एक एक गोपी एक एक सब गोपियों को भी छोड़ करके अकेले में दौड़ी और वहां पर उपस्थित। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा अपनी पतियों की सेवा करो, यहां निर्जन में आई हो और घर में जाओ पतियों की सेवा करो, वो तुम्हें खोज रहे होंगे और यदि आकर के देखेंगे तो यह शौकीय भाव, यदि कृष्ण ही पति होते तो उनको कहने की क्या जरूरत। गोपियां भी कह रही हैं ऐसे ही, अब हम घर में जाकर के क्या करेंगे, हमारे पैर नहीं घर में जा रहे हैं, हम जाकर के क्या करेंगे, अब हमें पति और पुत्र इत्यादि कोई सास इत्यादि हमको नहीं रखेंगे घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, अब तो जाकर के ही क्या करेंगे। कृष्ण और भी उसमें बदला, पति सुतान्वय भ्रातृबंध मान अति पिलंघते अंत अच्युतागता इत्यादि सब होता है। कितब जोशितो कष्ट जन्य पति सुतान्वय पति इत्यादि सबको छोड़ करके चली आई, यही गोपियों का वैशिष्ट्य है। यदि कृष्ण नहीं होते प्रेम के विषय और वो यदि छोड़ करके जाती तो ये महादोष कलंक होता है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन उनकी स्वरूप शक्ति ये गोपियां या विश्व का कोई भी मान लिया अत्रि ऋषि की अनुसुईया पत्नी अपने पातिपत्य के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना पुत्र बना लिया। वो भिक्षा मांगने के गए अपने पतियों की संतुष्टि पत्नियों की संतुष्टि के लिए। पत्नियों ने लक्ष्मी जी उमा जी और सरस्वती तीनों ने अपने पतियों से कहा, हम सुनते हैं कि अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता है, उनकी परीक्षा ले ली जाए। उन्हें काजे मत कहो, हमको गड़बड़ में पड़ जाएंगे, लेना का देना हो जाएगा। नहीं मानी तो गए परीक्षा लेने के लिए। उस समय अत्रि ऋषि बाहर में थे, तपस्या कर रहे थे, ये घर पर थी। उस समय में प्रौढ़ से भी अधिक थी, वृद्धा तपस्विनी थी। तीनों वहां पर आए, बोले जैसे भिक्षांग देही कुछ स्वरूप बदल करके आए हूं। वो कुछ भिक्षा देने के लिए गई, कुछ फल इत्यादि लेकर के देने के लिए। उन्होंने कहा जैसे नहीं, बिल्कुल नंगी होकर के आकर के भिक्षा दे। उन्होंने देखा जैसे कौन कह सकता है। वो समझ गई और गई अपने पति से हुक्म लेने के लिए, पति से ऑर्डर लेने के लिए। पति से पूछा, पति ने कहा जैसे कहते हैं वैसे करो, ये साधारण नहीं है, तुम्हारी परीक्षा हो रही। आई और उन्होंने क्या किया, उनका जो ठीक है मैं तुमको भिक्षा देने के, तुम हमारे भी नंगे आज ही जैसे बच्चे उत्पन्न हुए बन जाओ। बस हो गई, नंगी होकर के उनको दूध पिलाया, उनके बच्चे हो। ऐसी तो पतिव्रताएं हैं, किंतु इनसे द्रौपदी कुंती तारा अहल्या मंदोदरी अधिक हैं, इनसे भी अधिक हैं। देखने में ऐसा मालूम होता है ऊपर से, उस पातिव्रत्य का क्या मूल्य यदि कृष्ण से प्रेम नहीं है। कृष्ण ही हमारे परम पति हैं, जन्म जन्मांतरों के, लाखों कोटि जन्मों के, यदि जन्म न हो तो भी स्वर्ग से ही हमारे पति हैं। इसलिए कृष्ण से यदि प्रीति नहीं हुई तो इस पतिव्रता का कोई अधिक मूल्य नहीं है, इसे जन्म मरण से अतीत होकर के कोई नहीं जा सकता है। भगवान का चरणों में प्रेम नहीं से होगा। यदि वेश्याओं को देखिए, यदि कृष्ण का भजन किया तो कैसे ऊंचे निकले। इसलिए कुछ मूल्य है संसार में मर्यादा के लिए, किंतु कृष्ण ही परम पति है, उनको छोड़ करके। रुक्मिणी जी कह रही हैं, हाड़ चाम मांस वाला हमारा पति नहीं, हमारा पति तो कृष्ण है जो हमारी सब प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। ये पति तो हमारे पति पहले ही मर जाता है, ये क्या हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए कृष्ण ही परम पति है, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए पति सुतान्वय धातृपण धमान अति विलंघते, जो जिनका कृष्ण में प्रेम है वो जहां कहीं भी हो वो सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों जैसा और किसी में प्रेम नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पतियों को भी, लौकिक पतियों को भी छोड़कर के कृष्ण में अनुराग किया। इसके अतिरिक्त राजपंच अध्याय के समय समस्त जितने भी श्लोक हैं सब इसी प्रकार से है। अड़द जद भवान अन्न काननम तुड़युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते पक्ष दिशा इत्यादि, इस श्लोकों में भी वैसा ही भाव है। इस प्रकार से विक्रीडितम ब्रजवधु भी इदं च विष्णु सत्धान्विताम अनुसुणिया तथा परणीत ज भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध काम मृदरोग माशु अपहिनत चरीण नीर। भक्ति एक ऐसी चीज है, कृष्ण एक ऐसी चीज है जो केवल बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा अनर्थ मुक्त, ऐसे लोगों के हृदय में ही भक्ति आती है, ऐसी बात नहीं। अत्यंत नीचे स्तर के व्यक्तियों में, अनर्थों से भरे हुए व्यक्तियों के हृदय में भी ये भक्ति देवी प्रकाशित होकर के और क्या करती हैं, पहले प्रकाशित होकर के हृदय के जितने काम, रोग, वासना, अनर्थ, अपराध सबको समूल ध्वंस कर देती है। भक्ति के बिना ये सब काम नहीं होगा, इसलिए पहले भक्ति आएगी, उसका चित्त निर्मल हो जाएगा और आने के साथ ही साथ में उसके हृदय के जितने काम, रोग इत्यादि भी हो जाएंगे। इसलिए बतलाये विक्रीडितम ब्रजुवधु भी इदंच विष्णु श्रद्धान्विता। श्रद्धा पूर्वक यदि कोई, श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा और धीर, इसमें दो शब्द हैं। श्रद्धा माने क्या, कृष्ण की लीलाओं कथाओं को श्रवण करने से हमारे अंदर में लोभ पैदा होकर के कृष्ण की वैसी प्रेममयी सेवा को मैं प्राप्त कर लूंगा या लोग प्राप्त कर लें, शास्त्रों में ये जो कहा गया इसके प्रति श्रद्धा हो। इसलिए इसका पहले का श्लोक वो क्या है जिसमें बतलाया गया है जिसे नहीं करने से पतवाय होगा, अरे नहीं भैया, इसका पहले का श्लोक दो लाइन का वाला, मानुषी आश्रित मानुषी देह जसुत्वा तत्परो भवे अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा भवे। भवे शब्द के लिए बताया, भवे माने क्या, ये विधि लिंग है, विधि लिंग माने क्या, ये निश्चित विधि है और उसमें एव शब्द दिया, निश्चित रूप में ये विधि है, यदि विधि का पालन नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक इन लीलाओं का अनुश्रणिया पहले निरंतर श्रवण करें, गुरु के मुख से इन लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और वर्णयेत, इसके बाद में उसका वर्णन करता है लीलाओं का। तो होगा क्या, पहले हृदय में भक्ति प्रेमा भक्ति प्रकाश करेगी, पराभक्ति प्रकाश करेगी और उसके प्रभाव से सारे अनर्थ, यहां तक कि काम वासनाएं भी, हृदय रोग भी सब समूल ध्वंस हो जाएंगे। जो इस शास्त्र के बातों पर विश्वास करता है, जो श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनने से प्रत्यवाय होगा, उसको कहते हैं धीर। और जो लोगों को इन शास्त्र बातों पर विश्वास नहीं है उनको क्या कहेंगे, अधीर। वे लोग अपराधी हैं, ऐसे लोगों को कोटि वर्षों में भगवान की लीला कथाओं को सुनने का अधिकार ही नहीं होगा, न सुनेंगे और न कभी इनको होगा, ये लोग अपराधी हैं भगवत चरण में। स्पष्ट रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और जीव गोस्वामी ने बताया। इसलिए श्रद्धा जिसको हो गई लीला कथाओं के श्रवण में, उनका अनुसरणिया निरंतर श्रवण करेगा कृष्ण की लीला कथाओं को और इसके बाद में अपने लिखित पद्यों में, कविताओं में कृष्ण की इन लीलाओं को छंदबद्ध करके दूसरों को सुनाएगा या ऐसे ही हरि कथा के रूप में सुनाएगा, बहुत शीघ्र ही अनर्थ सारे दूर हो जाए भक्ति के प्रकाश। ऐसा क्यों, अरे ऐसी महिमा ही दुर्वितर्क है, सत्संग की महिमा कैसी है, महत अद्भुतम, क्या एतद महत अद्भुतम महत संगम, महत संग का ऐश्वर्य ऐसा ही विचित्र एक है कि कोई पूर्व जन्म में या इस जन्म में साधन नहीं किया, कोई भी साधन नहीं किया किंतु महत्पुरुषों का संग हो गया और उसने थोड़ा सी आशीर्वाद के मूड में इन कथाओं का श्रवण करा दिया और ऐसे कह दिया हे ओ मस्तो एतद् भवत, ऐसे कह दिया बस। एक ने क्यों हो गया, जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े साधुओं को दुर्लभ साधन का, अत्यंत क्लिष्ट साधन करने पर भी, भगवान की कृपा होने पर भी जो चीज दुर्लभ है नहीं मिलती, ये भाव पतिय भाव, ये क्या होगा, महत संग का ऐसा अद्भुत आश्चर्यमय यह फल है कि उनके संग से कुछ दिनों में ही ये चीज उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा और वो शब्द इस प्रकार से जन शर्मा का स्वरूप जैसे गुरु के आशीर्वाद से वो तत्कनात स्वरूप जैसा कृतार्थ उनका जीवन हो गया। यदि गुरु ऐसे हो, यदि शिक्षा गुरु ऐसे हो तो ऐसा संभव है। इसका महात्म्य क्यों क्यों मत पूछो, उनका महात्म्य है। आग क्यों जलाएगी, हम हाथ जलाएंगे, आग आग में जलाए हाथ देंगे, आग नहीं जलेगा, जब कहेंगे जलाओ तब जलेगा, ऐसा नहीं। वो आकाश स्वभाव है, वो जलाएगी ही। यदि उसका स्वभाव तो भक्ति का स्वभाव नहीं होगा। महात्मा साधु समूह का महात्म इसलिए श्रीमद् भागवत में, इसके बाद भी भ्रमर गीति इत्यादि में भी ऐसा ही देखा जाता है। पर ये भाव की स्थापना की गई, यहां तक कि 81 या 83 अध्याय में वहां पर सूर्य ग्रहण के समय जब गोपियां गई तो वहां पर भी ऐसे पारकीय भाव की स्थापना की गई। इसलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण का स्वरूप बतलाते हुए प्रेम रस का निर्जास करने के लिए, आस्वादन करने के लिए कृष्ण प्रेम के विषय, रस के विषय के रूप में यहाँ पर आए। व्यास जी ने उसी की महत्ता है, इसलिए कृष्ण का जितना स्वरूप है उसमें यह मदन 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 मोहन मन मत मत मन, ये यही भाव सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण का यही यथार्थ स्वरूप है। आज यही तक रहे वंशा कल्पतरुभ्यः कृतार्थं हरि वचनं पतितानां पावनं